वास्तव में यह कुरान वह मार्ग दिखाता है जो सबसे ज्यादा सीधा है, और ईमान वालों को जो अच्छे काम करते हैं शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा बदला है।
कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। मैं हूं जहरा जैदी और कार्यक्रम में मेरा साथ दे रहे हैं हसन अब्बास। तो आइए पहले सूरह नमल की आयत नंबर 29 से 31 तक की तिलावत सुने।
إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين।
सभा देश की साम्राज्ञी बोली, हे सरदारों, मेरी ओर एक मूल्यवान पत्र डाला गया है। ये सुलेमान की ओर से है और उसमें ये लिखा है कि अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है, ये कि मेरे मुकाबले में उद्दंडता न करो और आज्ञाकारी बनकर मेरे पास आओ।
इससे पहले कहा गया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सभा के क्षेत्र की स्थिति और वहां के लोगों द्वारा सूरज की पूजा की सूचना पाकर एक पत्र लिखा और हुदहुद को वो पत्र पहुँचाने का दायित्व सौंपा। हुदहुद सभा की साम्राज्ञी के दरबार में पहुंचा और उसने वो पत्र उसके सामने डाल दिया।
ये आयतें कहती हैं कि सभा की रानी पत्र देखकर समझ गई कि ये सुंदर पत्रवाहक पक्षी किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास से पत्र लेकर आया है। उसके कई मंत्री और सलाहकार थे जिन्हें वो समाचारों और घटनाओं से सूचित करती थी। उसने उन्हें बुलाया और उनके सामने स्वयं वो पत्र पढ़ा। पत्र ईश्वर के नाम से शुरू हुआ था और उसमें दो बातें वर्णित थीं, एक सत्य के समक्ष नतमस्तक होना और दूसरे सुलेमान के शासन के मुकाबले में किसी भी प्रकार की उद्दंडता से दूर रहना।
इन आयतों से हमने सीखा कि सभी कामों को कृपाशील व दयावान ईश्वर के नाम से शुरू करना चाहिए, यहाँ तक कि काफिरों को पत्र लिखने में भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के वाक्य को नहीं भूलना चाहिए।
वर्चस्ववाद, विशेषकर ईश्वर के प्रिय बंदों के मुकाबले में स्वयं को श्रेष्ठ समझना, सत्य के मुकाबले में नतमस्तक रहने की संभावना समाप्त कर देता है।
आइए अब सूरह नमल की आयत नंबर 32 और 33 की तिलावत सुने।
قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين।
साम्राज्ञी ने कहा, हे सरदारों, मेरे मामले में मुझे परामर्श दो कि तुम्हारी उपस्थिति के बिना अब तक मैंने कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया है। उन्होंने कहा, हम शक्तिशाली हैं और हमें बड़ी युद्ध क्षमता प्राप्त है। आगे मामले का अधिकार आपको है, अतः आप देख लें कि आपको क्या आदेश देना है।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पत्र पढ़ने के बाद सभा की रानी ने, जो एक दूरदर्शी महिला थी, देश के उच्च अधिकारियों से जो दरबार में उपस्थित थे कहा कि वे बताएं कि पत्र का क्या जवाब दिया जाए। स्वाभाविक है कि ये परामर्श इस बात में उसकी सहायता करता है कि सुलेमान से मुकाबले के लिए उसके लोग किस हद तक तैयार हैं और फिर वो सही व उचित मार्ग का चयन कर सकती थी।
बिल्किस नामक उस साम्राज्ञी के सलाहकारों और सैन्य कमांडरों ने अपनी शक्ति और सामरिक संभावनाओं पर गर्व जताया और सुलेमान की सेना की ओर से हर प्रकार के अतिक्रमण के मुकाबले के लिए अपनी तैयारी की घोषणा की। वस्तुतः पत्र से वे ये समझे थे कि हजरत सुलेमान ने युद्ध की घोषणा कर दी है और अधिकांश सैन्य अधिकारियों की तरह उन लोगों ने हथियार डालने के बजाय लड़ने का सुझाव दिया। इसी के साथ उन्होंने अंतिम निर्णय रानी पर छोड़ दिया और कहा कि वो जो भी आदेश देगी उसे अंजाम दिया जाएगा और उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा।
इन आयतों से हमने सीखा कि देश के संचालन के लिए सैन्य शक्ति और सामरिक संभावनाएं आवश्यक हैं। अलबत्ता उसकी शर्त यह है कि वो घमंड और वर्चस्व प्रेम का कारण न बने। और सत्य स्वीकार करने में आड़े न आएं।
सभी कार्यों विशेषकर सरकारी कामों में परामर्श आवश्यक है, लेकिन अंतिम फैसला एक ही आदमी को करना चाहिए ताकि कार्यों में बिखराव न आने पाए।
आइए अब सूरह नमल की आयत नंबर 34 और 35 की तिलावत सुने।
قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون।
बिल्किस ने कहा, जब सम्राट किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं और वहां के प्रभावशाली लोगों को अपमानित कर देते हैं और वे सदैव ऐसा ही करते हैं, और मैं उनके पास एक मूल्यवान उपहार भेजती हूं, फिर देखती हूं कि दूत क्या उत्तर लेकर लौटते हैं।
जब सभा की रानी ने अपने उच्च अधिकारियों और प्रतिष्ठित लोगों के विचार सुने और सैन्य टकराव के लिए उनकी तैयारी से अवगत हुई, तो उसने अपना फैसला इस प्रकार बयान किया कि अगर हम युद्ध करेंगे तो तबाही और बर्बादी के अतिरिक्त कुछ और प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वर्चस्ववादी शासक जिस शहर में भी घुसते हैं उसके घरों को तबाह और मर्दों की हत्या कर देते हैं या उन्हें दास बना लेते हैं। इस प्रकार उस क्षेत्र के लोग बेघर और असहाय हो जाते हैं। अतः बेहतर है कि युद्ध की घोषणा के बजाय दूसरे पक्ष के बारे में अधिक सूचनाएं प्राप्त की जाएं, ताकि ये ज्ञान हो सके कि पत्र भेजने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था।
इसी विचार के साथ उसने हजरत सुलेमान के लिए एक मूल्यवान उपहार भेजने का निर्णय किया, ताकि ये देखे कि उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है। क्या उपहार भेजने से जो युद्ध न करने के निर्णय का चिन्ह है बात समाप्त हो जाती है, या वास्तव में उनका लक्ष्य उसके देश का अधिग्रहण और इस क्षेत्र पर कब्जा करना है। फिर सुलेमान की प्रतिक्रिया के दृष्टिगत ये निर्णय लिया जा सकता है कि उनसे युद्ध किया जाए या कोई दूसरा मार्ग अपनाया जाए।
या शायद सबक की साम्राज्ञी उपहार भेज कर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की परीक्षा लेना चाहती थी कि वे वास्तव में पैगंबर हैं या फिर एक घमंडी शासक हैं जो अन्य देशों पर कब्जा करने की चेष्टा में है, क्योंकि वो जानती थी कि पैगंबर सांसारिक वस्तुओं के लोभ में नहीं आते और नसीहत व प्रचार नहीं छोड़ते, बल्कि ये सांसारिक माया मोह में ग्रस्त शासक होते हैं जो अपने व्यक्तिगत हितों की प्राप्ति और धन व शक्ति के लिए हर काम करने पर तैयार रहते हैं।
इन आयतों से हमने सीखा कि युद्ध व रक्तपात दूसरों पर वर्चस्व के लिए गैर ईश्वरीय सरकारों की शैली है।
इस बात की ओर से सचेत रहना चाहिए कि कभी कभी दूसरों की ओर से मिलने वाले उपहार रिश्वत होते हैं, ताकि हमारी परीक्षा ली जा सके या किसी के अधिकार का हनन किया जा सके।